ओम शांति। बाबा की यादों में समाये हुए एक से बढ़ के एक अनुभवी राजयोगियों के अनुभव से अपनी जीवन की झोली को, बुद्धि रूपी झोली को भरने में तत्पर हैं, तो आज हमारे बीच में पधारे हैं वरिष्ठ राजयोगी आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। हम एक हाथ की ताली से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भ्राता जी का जीव जो विषय है आज का, उस विषय के अनुरूप उनका जीवन है। आज का विषय है साइलेंस के प्रयोग। तो भ्राता जी विगत 40 वर्षों से राजयोग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से मधुबन पावन भूमि में रहकर अपनी कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं ग्लोबल रिसर्च सेंटर और ट्रॉमा सेंटर पाबू रोड दोनों के अंतर्गत निदेशक के रूप में दे रहे हैं। आपने राजयोग की जीवन शैली से दिल की बीमारियों को दूर करने का एक बहुत बड़ा अनुसंधान किया है, जिसे कैड प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए आपको 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कार्डियोलॉजी की सेवाओं की उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया। इसी प्रकार 2008 में हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा पाटिल जी ने भी आपको कार्डियोलॉजी की सेवाओं के लिए उत्कृष्टता का सम्मान दिया। इसी प्रकार आपको रशिया की रूस की देश से भी उत्कृष्ट सेवाओं का मेडल प्राप्त है। आप चिकित्सा जगत के विभिन्न एसोसिएशन और विभिन्न प्रभागों में पदाधिकारी के रूप में, सदस्य के रूप में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और आपको ये जानकर परम हर्ष होगा, प्रैक्टिकल रिजल्ट लगभग 10,000 से भी ज्यादा ऐसे हार्ट के डॉक्टर, पेशेंट आदि का आपने राजयोग की जीवन शैली से, जिसे 3D हेल्थ हैप्पीनेस प्रोजेक्ट भी आपके भाषा में कहा जाता है, और कैट प्रोजेक्ट के माध्यम से इन्होंने उनको रिलीफ दिया है। इसलिए दिलाराम बाबा के आप दिल वाले बच्चे कहे जाते हैं। तो ऐसे अनुभवी राजयोग के प्रयोग चिकित्सा जगत में करके बाबा की महिमा को, बाबा की प्रत्यक्षता को करने वाले भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से हम निवेदन करते हैं कि हम भी साइलेंस के प्रयोग ऐसे अपने हेल्थ के ऊपर, ऐसे अपने वर्तमान कार्यकाल के ऊपर डाल सकें, उस पर हमें अनुभव युक्त सार गर्भित विचार रखें। आदरणीय भ्राता जी, पुनः एक हाथ की ताली से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
ओम शांति, ओम शांति। हम सभी आत्माएं ऐसे समय पर पहुंच गई हैं जहां पर क्या आवश्यक है, अभी वाणी की सेवा कि तुम अभ्यासी बन गए, कि तो वाणी अब समय ऐसा आ रहा है वो जल्दी मे भी कुछ महीने में आ जाए कि जब वाणी की सेवा खत्म हो जाएगी और सिर्फ साइलेंस की सेवा रह जाएगी। संकल्पों द्वारा सेवा, भावना द्वारा सेवा, नैनों द्वारा सेवा, चेहरे द्वारा सेवा, चेहरे और चरण के द्वारा सेवा, और परिस्थितियां बहुत बहुत भयानक होंगी। अच्छा, हम सबको क्या 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 आदत है हमको, जैसी परिस्थिति वैसा सोच, जैसी परिस्थिति वैसे सोच चलते हैं। वो हमें अच्छा अच्छा बोल रहा है तो हम अच्छा सोचते हैं, खुश हो जाते हैं। कोई हमको गलत बोल रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो हम क्या होता है, हमारे विचार भी वैसे चलने शुरू होते हैं। विचार चलते ना, नहीं चलते, तन में कुछ समस्या आ जाती है, बीमारी आ रही, तो क्या होता है, विचार चलते हैं ना, चलते हैं। घर में कुछ हो जाता है, कोई बीमार हमारा संबंधी, कोई हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, तो विचार चलते नहीं चलते, नहीं चलते, राइट है, राइट है कि रॉन्ग है, राइट है। जैसी परिस्थिति वैसा ही हमारे विचार चलते, चलने चाहिए, नहीं चलने चाहिए, नहीं चलने चाहिए, चलते हैं। जिनके ऐसे विचार चलने बंद होंगे हाथ उठाओ। जैसी परिस्थिति वैसा सोच नहीं होता है, मतलब आप हमेशा अपने स्वस्थिति में रहते हैं। कभी भी कोई भी कुछ भी शरीर में कुछ हो जाए, घर में कुछ हो जाए, कोई मर जाए, मृत्यु हो जाए, विचार ना चले, ऐसा कोई है? इतना कोई मारक ही बना? नहीं बना। वो त्रंपा देखो, एक तो वर्णन करना, एक होता है अनुभवी बनना। तीन स्टेज होती है ना साइलेंस पावर की, तीन स्टेज। एक तो मैंने क्लास करा दी, आपने भी क्लास सुन ली, आपने भी क्लास करा दी, ये तो बहुत सहज है। वर्णन करना तो माधा कल्प से करते ही आए ना। द्वापर से हमने क्या किया? सुना और उसमें नमक मिर्च मिला के, मसाला मिला के, और उसको सुना दिया ना, कीर्तन के रूप में, महिमा के रूप में सुना, किया ना, नहीं किया? फिर एक तो वर्णन, एक अनुभवी बन जाना। मैंने रियल में साइलेंस पावर का अनुभव किया है, तो वो तो एक बात हो गई। पर तो एक होता है अनुभवी बन करके योग का प्रयोग करना, स्वयं पर, तन पर, मन पर, समस्याओं पर और परिस्थितियों पर और परिवार पर, दुनिया पर और प्रकृति के पांचों तत्वों को। प्रकृति के पांचों तत्वों कौन बदलेगा? हमें, हमें ही बदलना ना, कौन बदलेगा? मास्टर रचता है ना, तो हमें बदलना पड़ेगा, राइट? तो हमारी ऐसी स्थिति बनी है क्योंकि जब हम सत्ययुग में आए थे तो हमारे कैसे संकल्प थे? एक ही संकल्प चलता था, जो जब जो संकल्प रामानुसार आता था वो हो जाया करता था, राइट? कभी दूसरा संकल्प करने की आवश्यकता पड़ी? कभी नहीं पड़ी। इसलिए हमारा संकल्प सिद्ध था। सत्ययुग आया, त्रेता आया, फिर द्वापर आया। जैसे द्वापर आया, सत्य त्रेता में आत्मा राजा थी, मन बुद्धि संस्कार उसके कंट्रोल में थे, पांचों कर्म इंद्रियां से कंट्रोल में थे। आत्मा के साथ साथ चैतन्य आत्मा उठ जाए थे ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सत्य, निस्वार्थ स्नेह, अतिंद्रिय सुख, अतिंद्रिय सुख नहीं कहेंगे, सुख आनंद और अठो शक्तियां, आत्मा भरपूर थी। सतो प्रधान माना, सतो माना साथ, प्रधान माना भरपूर, आत्मा सतो प्रधान थी, राइट? तो बुद्धि भी सतो प्रधान थी, मन भी सतो प्रधान था और हमारे संस्कार भी सतो प्रधान थे और हमारी आंखें भी सतो प्रधान थी, कान भी सतो प्रधान थे, मुख भी सतो प्रधान था, नाक भी सतो प्रधान थे, हमारी पूरा शरीर हर अंग सतो प्रधान था। सातों चैतन्य आत्मा को जहां से भरपूर, इसलिए हमारा आभा मंडल बहुत बड़ा था, आभा मंडल हमारा बहुत बड़ा था। तो ये हमारी स्थिति तभी है। धीरे धीरे आत्मा की बैटरी कमजोर होती गई, द्वापर युग का एंड, द्वापर त्रेता का एंड आते आते आत्मा की बैटरी 50% हो गई। मन प्रधानमंत्री था, मन तो मुख्य है ना प्रधानमंत्री, तो फिर आत्मा की बैटरी जैसे ही 49.9 हुई तो आत्मा, मन की एनर्जी कितनी हो गई? 50.1 हो गई। तो राजा कौन बन गया? मन बन गया। इसलिए हम पहले देवी देवता कहलाते थे, फिर क्या कहलाए? मनुष्य, मन के वश में हो गया मन राजा। आत्मा भी उसके वश में हो गई, बुद्धि भी उसके वश हो गई और संस्कार भी उसके वश हो गए। और मन का कनेक्शन देह से था तो देह के अनुसार अब शक्ल दिखाई देने लगी। सत्य में गुणों में व्यवहार था, हमारा व्यवहार के गुणों में व्यवहार था ना, फिर हमारा व्यवहार किसमें हुआ? देह में व्यवहार हुआ। देह अभिमान, इतनी पोजिशन वाला है, इतने पैसे वाला है, इसकी शक्ल ऐसी है, इसका ऐसा है, देह की तरफ आकर्षण आया, इसी को काम विकार का, अपनी देह और किसी के देह की तरफ आकर्षण आया, क्रोध आया, वो भी डर से पैदा हुआ। देवी मान आया ना, डर से आया ना, देवी मान से डर पैदा हुआ, फिर उससे काम विकार आया, क्रोध आया क्योंकि मेरे जो कुछ तंग ना करे, लोभ आया, राइट, और इकट्ठा कर ले, मोह आया, जो व्यक्ति मेरे पास आस पास मेरे पास ही रहे, अहंकार आया, जो चीज इकट्ठी की थी उसका अहंकार हो गया। फिर इनके बाल बच्चे आते गए और पैदा हो गए, आलस, बेलापन, चिंता, भय, जल्दीबाजी, शादी शोर पड़ गया, झगड़े शुरू हुए, बीमारियां आनी शुरू हुई। और अब आते आते क्या हुआ, हमारे मन, क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं है तो बहुत विचार चलते हैं, जैसा समय जैसा स्थान जैसी परिस्थिति उस अनुसार हमारे विचार चलते हैं। तो शांति की वजह क्या हो गई, अशांति हो गई। शांति क्या है, अशांति क्या है, तो शांति क्या चीज है बताओ, एनीवन? हम ओम शांति कहते हैं ना, ओम शांति, ओम शांति क्यों बोलते हैं, ओम प्रेम क्यों नहीं बोलते, ओम सुख क्यों नहीं बोलते, ओम आनंद क्यों नहीं बोलते? ओम मना, ओम मना, ओम दो शब्द से बना, अहम प्लस मम, अहम प्लस मम, अहम आत्मा मम शरीरम, मैं आत्मा ये मेरा शरीर है, राइट? और शांति का मतलब होता है बीइंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहना, वर्तमान में रहना। हम कहां रहते हैं अभी, 90% बचपन से लेके हमारे हमें जो भी हमारे साथ घटता है ना, वो विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, अंदर रिकॉर्डिंग हो जाती है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसके अनुसार ही हमारे जिसको हम चित्त कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है। तो आज बचपन से लेके हमारे अंदर बहुत सारा मटेरियल सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, जो हमने गलत कर्म किया ना सारे के अंदर रिकॉर्ड हो गए। तो अब विचार उसके हिसाब से, जैसे जैसे चश्मा मैं पहनू ना, काले रंग का चश्मा तो अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, हरा तो हरे रंग का, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड का चश्मा, चित्त का चश्मा पड़ा हुआ है, उस चित्त जो है कि जैसा चित्त वैसा चिंतन। अगर मेरा चित्त शांत है, एकाग्र है, आनंदमय है, तो चिंतन कौन सा चलेगा, शांति का, प्रेम का, खुशी का, आनंद का, अर्थात तब बाबा की मुरली का चिंतन चलेगा, तब मुरली का मनन चिंतन चलेगा, मनन चिंतन मंथन से मनन चलेगा। नहीं तो क्या चलता है, हम मुरली सुनते हैं ना, तो सभी मुरली सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, पर दिन में क्या होता है, मुरली का चिंतन चलता है, ऑटोमेटिक चलता है, हाँ चलता है, क्यों नहीं चलता, क्योंकि चित्त अशांत है, चंचल है, बेचैन है, राइट? तो हमारी फाइलें कौन सी खुलती हैं, फाइलें खुलती हैं जो झगड़े वाली, इसने ऐसे किया, बेटे को ये हो गया, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया, पाकिस्तान से लड़ाई शुरू हो गई, क्या होगा, कैसे होगा, है ना, वापिस कैसे जाएंगे, अब तो यहां पर आ गए, नहीं होता, चिंता चलता है ना, जहां से हम आए वहां पे अटैक नहीं हो जाए, मिसाइल में डल जाए, चलता है ना, मेरे कुछ ना कुछ चलता है ना, जो जो भी समस्या है ना उसके सबसे, तो ये चिंतन चलता है ना, तो इसलिए हमारे हमारी मुरली का, हम मुरली का मनन चिंतन मंथन नहीं कर पाते, राइट? तो इसलिए हमारे अंदर क्या होता है, तो ये जो साइलेंस पावर है ना, इसका मंत्र कौन सा है, साइलेंस पावर माना शांति की शक्ति, तो शांति की शक्ति का मंत्र कौन सा है, एनीवन? मंत्र जिससे हम शांत हो जाएंगे, मन मना भव। और यंत्र कौन सा है जिससे हम मन मना भव हो जाएंगे, मन मन, इसका जो यंत्र है वो दो है, एक तो है हमारी सच्ची दिल, साफ दिल। अगर हमारी दिल सच्ची साफ नहीं है तो हम कभी भी मन मना भव नहीं हो सकते, हमारा हर विचार क्या बन जाए, शुभ भावना, शुभ संकल्प हो, शुभ भावना हो, सबके प्रति शुभ वृत्ति हो, शुभ दृष्टि हो, श्रेष्ठ दृष्टि हो, और हमारी स्मृति कैसी हो, श्रेष्ठ स्मृति हो, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप की स्मृति हो, राइट? क्योंकि स्मृति से ही चेहरा, चेहरा और चलन, जैसे स्मृति वैसे चेहरा होता है, और चलन माना कर्म, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा खाना पीना, हर कर्म, चल मना कर्म, चेहरा मना होता है मन, जो मन में होता है वो चेहरे पे दिखाई देता है, संस्कार जैसे हमारी आदतें होती है ना वो चेहरे से दिखाई देती है। तो हमारे तीन ही साधन है इसके, सूक्ष्म सेवा करने के तीन साधन है, कौन कौन से, शुभ संकल्प, शुभ भावना और चेहरा, चेहरा चेहरा माना नैनों की भाषा, इशारों की भाषा, राइट। चेहरे के द्वारा हम बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं। जो वाणी वाणी चलाते हैं ना हम लोग, वाणी से क्या होता है, वाणी के द्वारा हमारा, हमने बहुत भाषण किया, अच्छा सा भाषण किया तो दिमाग तक लग जाता, दिमाग तक तीर लग जाता, बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी बातें बताई। किंतु जो साइलेंस पावर का तीर कहां तक जाता है, दिल तक जाता है, आत्मा के दिल, ये दिल नहीं, ये तो फिजिकल दिल है, ये आत्मा का दिल, इसमें पहुंच जाता है, राइट। इसको भूल नहीं सकते, इसलिए अनुभव जो अनुभव सुनाते हैं ना तो वो कहां पहुंच जाता है, दिल तक पहुंच जाता है, भूलता नहीं है, राइट। तो हमें अभी देखना है कि हमारी दिल अगर सच्ची और साफ है, दिल किसे कहते हैं, दिल माना चेतना, कॉन्शियसनेस। जैसे आपने देखा ना शूटिंग बोर्ड होता है ना, शूटिंग बोर्ड होता है ना, जिसके यहां हम पिक्चर से शूट करते, बीच में एक बिंदु होता है, उसके बाहर एक सर्कल होता है, फिर एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, जो पहला सर्कल है ना बिंदु के पास, उसको कहते दिल, चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं। वहां आत्मा के साथ एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जैसे बल्ब है ना, लाइट है ना, सबसे ज्यादा लाइट कहां पर है, उसके आसपास, जितनी दूर होंगे उतना लाइट कम होती चल रही। तो ऐसे आत्मा की एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पर है, कहां पर, पहले सर्कल में जा रहा हूं, तो आत्मा के साथ। तो दिल, दिल में क्या है, मेरे बुद्धि है ना, बुद्धि के चार आस्पेक्ट है, पहला है दिल, दूसरा है विवेक, जिसे हम कहते थर्ड आई ऑफ विजडम, तीसरी आंख भी कहते हैं, दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, तीसरा है यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, यथार्थ मतलब वो पहली जो कौन सी हुई, दिव्य दृष्टि को सत्य को परखने की शक्ति कहते हैं, राइट। विवेक थर्ड आई विजडम भी कहते हैं। जब थर्ड आई विजडम खुल जाती है, तीसरी आंख खुल जाती है, तो फिर क्या होता है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, दिव्य यहां कहें यथार्थ निर्णय करने की शक्ति जागृत हो जाती है, उसी को दिव्य बुद्धि कहते हैं। और दिव्य बुद्धि जब जागृत होती है तो क्या होता है, फिर जैसे दिव्य बुद्धि या भ्रष्ट बुद्धि, उसी के अनुसार हमारा चित्त होता है। चौथे चार आस्पेक्ट हो गए ना, क्या हो गए, पहला दिल, दूसरा विवेक, तीसरा अर्थात दिव्य बुद्धि, और चौथा चित्त, सबकॉन्शियस माइंड, राइट, सबकॉन्शियस माइंड, राइट। और मन के भी चार एस्पेक्ट होते हैं, मन फिजिकल नहीं है ना, बहुत बुद्धि भी फिजिकल नहीं है, मन के मन, मन क्या होता है, बाबा ने 99 की मुरली 31 दिसंबर 99 की मुरली मुझे समझाया मन के बारे में, कि मन के चार एस्पेक्ट हैं, हिंदी में कहते हैं संकल्प, माना विचार, भावना, विचार थॉट्स, दूसरा होता है भावनाएं, शुभ भावना, शुभ कामना, राइट, अर्थात इमोशंस, तीसरा होता है वृत्ति, शुभ श्रेष्ठ वृत्ति अर्थात एटीट्यूड, नजरिया, दृष्टिकोण, और चौथा होता है मेमोरी, स्मृति, राइट। तो अगर बेसिक जो चीज है, सबसे अंदर क्या है, आत्मा है, यहां पर यहां से 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे, तो आत्मा की सीट है, आत्मा से एनर्जी निकल रही है, राइट। अगर मेरे दिल में सत्य है, सत्य परम सत्य कौन है, देखो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, क्या मतलब है इसका, वो तो फिल्म का गाना है, सत्य ही शिव नहीं, शिव ही सदा सत्य है, अतः शिव सदा आत्ममानी है, शिव परमात्मा सदा आत्ममानी है, सदा ही उनको अभ्यास नहीं करना पड़ता, सदा आत्ममानी है, और हम आत्मा है, आधा कलप आत्ममानी है और आधा कलप देह भी माने, तो आधा कलप हम सत्य हैं और आधा कलप असत्य बन जाते हैं, असत्य माना रहने को तो हम आत्मिक हैं, तब तो द्वापर कलयुग में भी हम आत्मा ही हैं, किंतु हम अपने को आत्मा समझते नहीं है, देह समझते हैं, डॉक्टर इंजीनियर समझते हैं, माँ बाप समझते हैं, समझते नहीं, कोई समझाता है तो भी समझ नहीं आती, अभी 40 साल हो गए समझ, बाबा को समझाते समझाते 50 80 साल हो गए तो भी समझ में नहीं आया, आया कि नहीं आया, आगे नेचुरल बन गई स्थिति आत्मा ने, क्यों नहीं बनी? क्योंकि 2500 साल हमने पुरुषार्थ किया, किसका? देह अभिमान का, देह अभिमान नेचुरल नेचर बन गया है, नेचर बन गया ना, राइट, नेचर तो अभी नेचुरल नहीं हुआ। तो अभी जो है हमारे अंदर तो देह अभिमान जैसे नेचुरल हो गया ना, राइट। तो ये जो है देह अभिमान, अभी जो है दिल जो है तो परम सत्य परमात्मा है, राइट। और फिर सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सदा सुंदर है, मां सदा पावन है, एवर प्योर है। और हम आत्माएं आधा क्लब सुंदर है, अर्थात सुंदर है, पावन है, और आधा क्लब क्या है? पतित बन जाता, अर्थात श्याम बन जाते, राइट। तो परमात्मा परम सत्य है, और परमात्मा परम चैतन्य है। क्यों चैतन्य? परम चैतन्य क्यों है? क्योंकि हम आधा कलप चैतन्य आत्माएं हैं, हम अपने को आत्मा समझते हैं, और आधा कलप द्वापर कलयुग में क्या हो जाती है तो आत्मा पर अपने को आत्मा समझते हैं, आत्मा सो जाती है, कब्र दाखिल हो जाती है। परम सत्य, परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु हम आत्माएं, आधा कलप कैसी है? ज्योति जगी हुई है, फुल है, और आधा कलप क्या है? ज्योति बुझाई हुई, कम हो जाती है। तो हम परम ज्योति नहीं है, उसकी ज्योति एक जैसी है, हमारी ज्योति ट्विंकल ट्विंकल, हमारी ज्योति टिमटिमाती है, राइट ना, टिमटिमाती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, नहीं सितारों के माफिक टिमटिमाती है ना, राइट। और अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड अबाउ द स्काई, अबाउ इन द स्काई, अप अबाउ द वर्ल्ड, आसमान के ऊपर हो गया ना वो परमात्मा, एवर शाइनिंग है नहीं? तो परमात्मा को ना परम सत्य, परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु, आत्मा सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज है, और परमात्मा सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस है, पावर हाउस समझते ना, सागर है पावर हाउस। तो दिल, सच्ची दिल क्या? जिस दिल में बाबा के सिवा कुछ और नहीं है। कौन है? जिस दिल में बाबा के सिवा परमात्मा का परम सत्य परमात्मा के अलावा कुछ और नहीं है, उसकी दिल सच्ची है। चार सत्य है ना, कौन से? पहला परम सत्य परमात्मा, दूसरा आत्मा सत्य है तो आत्मा, भले उसको कहते नहीं है, है तो आत्मा, वैसी रहती है। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की दो परिभाषा, सत्य कभी भी एटर्नल है, शाश्वत है, अविनाशी है, जन्म मरण के परे है, राइट। दूसरा सत्य अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील है। दोनों बातें तो आत्मा पर लगती है ना, आत्मा बढ़ती है कभी, पैदा होती है क्या, जन्म मरने से परे, और दूसरा परिवर्तन भी नहीं होती, जैसी है साइज वैसी रहती है। मैं बड़ा हो गया तो बड़ी थोड़ी ना आत्मा हो गई, ऐसी कैसी ना, किंतु तो आत्मा की अवस्था बदलती है। क्या बदलती है? अवस्था बदलती, परमात्मा की अवस्था नहीं बदलती है ना, राइट। तो आत्मा परमात्मा सत्य है, परम सत्य आत्मा सत्य है, और आत्मा परमात्मा का संबंध सत्य है। सत्य है कि नहीं है? सदा है ना, सत्य में हमारे संस्कारों में समाया, द्वापर कलयुग से इसको याद करना शुरू कर देते हैं, दिल से याद करते हैं ना, नहीं करते है? करते हैं। तो परमात्मा को हम याद करना शुरू कर देते हैं तो हम, और फिर द्वापर कलयुग में तो बाप आ ही जाता है, याद करना सिखा देता है, राइट विधि सिखा देता है। तो परमात्मा के साथ संबंध सच्चे है ना हमारा, द्वापर से कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सेवा तुम्हारे, ऐसे बोलते नहीं बोलते। तो सर्व संबंधी है ना हमारा, सदा ही सुख संबंधी है, सदा ही उससे हमारा कनेक्शन सत्य है, भले ऊपर नीचे होता है पर है। तो चौथा सत्य है ड्रामा, कर्म सत्य है, कर्म से जो हमने कर्म कर दिया कभी भी माफ नहीं होता, हमने जो कर्म कर दिया वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। क्या खत्म होता है? हम कहते हैं विक्रम विनाश होते हैं, विक्रम विनाश का क्या मतलब है? विक्रम विनाश का मतलब क्या है मैंने किसी से आपसे 10 रुपए उधार लिया अभी और तुरंत वापस कर दिया, जैसे मेरे जेब में तंदुरुस्त, मेरे ऊपर आप चढ़ा क्या? मुझे जरूरत थी, मैंने लिया कि थोड़ी देर मेरे जेब में आ गया तो मैंने आपको वापस कर दिया, तो ब्याज चढ़ा क्या? 100 साल पर 10 रुपए लिया था आपसे और वापस नहीं किया किसी कारणवश, आप मेरे दोस्त थे, मैंने आपसे उधार लिया, आवश्यकता पड़ी तो उधार लिया पर वापस नहीं कर पाया, तो इस जन्म में क्या 100 साल के बाद क्या बनेंगे आप मेरे साथ, मेरे पास आएंगे क्या बनेंगे मेरे? या तो कुछ ना संबंधी बनेंगे, या तो पति पत्नी बनेंगे, या बच्चा बनेंगे, कुछ ना कुछ बनेंगे, या बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, और मैं 10 रुपए उसको वापस देना पड़ेगा, कितना ब्याज हो गया 100 साल का ब्याज कितना हो गया, कितना ब्याज हो गया 100 साल का ब्याज हो गया 4,18,35,040 रुपये, इतना ब्याज हो गया। किसी को मैंने 2 गाली दी थी लास्ट बर्थ में 100 साल पहले, कहते 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कभी भी रहेगा, नहीं कहते कहना कहते ना, 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे फिर भी क्या नहीं करेंगे, हिसाब किताब तो पूरा करेंगे, नहीं नहीं करेंगे, नहीं ऐसा। तो ये कर्मों का ये कर्म सत्य है वो हमें भोगना ही पड़ता है, किसी को भी छुट्टी नहीं है। देखा बाबा को भी छुट्टी थी क्या, मम्मा को छुट्टी मिली, दादे को छुट्टी मिली, किसी को छुट्टी नहीं मिली, सबको भोगना पड़ता है, कर्म भोग चुक तो करना पड़ता है। कि तो योग का क्या फायदा है फिर, क्या फायदा है अगर मैं सही विधि से योग करता हूं, मैंने किसी को 2 गाली दी 100 साल पहले, इस जन्म में क्या होगा वो व्यक्ति क्या बन के आएगा मेरा, या तो बॉस बन के आएगा, या पति बन के आएगा, या पत्नी बन के, सास बन के आएगी, कितनी गाली खाओगे, कम से कम 10,000 गाली तो खाओगे सुबह शाम सुबह शाम, और छूट भी नहीं सकते वहां से, कि वहां से भाग जाओ भाग भी नहीं सकते, भाग सकते ब्याज लगेगा नहीं लगेगा मेरे, किसकी 2 बार इंसल्ट किया हमने, अपमान कर दिया, कितनी बार अपमान होगा आपका इस जन्म में, कितनी बार होगा 10-20 हजार बार तो होगा, और वहीं रहना भी पड़ेगा, अपमान भी सहना पड़ेगा, भगाना भी मेरे पड़ेगा, छोड़ के भी भाग नहीं सकते, भाग गए तो पुलिस में कंप्लेन होगी, टीवी पे आएगा, अखबार में आएगा, कोई भी इसको पकड़ के लाए तो इसको 50,000 रुपये इनाम देंगे, ये कैदी भाग गया, पता नहीं। तो कर्म सत्य है, तो ये जिसके दिल में समझ गया ना, ABCD, आत्मा बाबा कनेक्शन और ड्रामा, जिसके दिल में ABCD आ गया ना सत्य, तो वो उसका दिल सच्ची है, सच्ची है। तो साफ माना, जिस दिल में श्रीमत के अलावा कुछ भी मनमत परमत ना हो, थोड़ी भी मनमत है ना परमत है, उस भाई ने ऐसा कहा, उस बहन ने ऐसा कहा, रामदेव ये बोलता है, हेल्थ के लिए कर लो, नेचुरोपैथी कर लो, है ना, कुछ और कर लो, मेरी बॉडी ऐसी बन जाए, है ना, सुंदर नजर आऊं, बाल काले कर लो, अच्छे लगे, यंग लगेंगे, है ना, मनमत परमत है ना, बॉडी कॉन्शियस है नहीं, बॉडी कॉन्शियस। तो जिस दिल में बाबा की मुरली के अलावा कुछ और नहीं है, वो दिल साफ दिल है, राइट। बाबा ने काले बाल किए थे हमने, दादी ने काले बाल किए अपने, दादी प्रकाशमणि ने, गुजरात ने काले बाल किए, जानकी दादी ने नहीं किए, किए थे रतन दादी ने किए, कभी प्राणायाम किया उन्होंने, शवासन किया, मुद्रा लगा के बैठे ऐसे करके, ऐसे करके बैठे गया, कभी नहीं बैठे। तो ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा को देखो, दादियों को देखो, तो वो ऐसी श्रीमत के अलावा जरा भी मन मत। मैं आपको 300 ग्राम दूध दूं एक गिलास में, 300 ml दूध, उसमें 1 ml जहर मिला दूं, तो क्या हुआ तो क्या ताकत आई पी के, ताकत आई क्या, नहीं आई ना। तो ऐसे ही मैंने श्रीमत में थोड़ी मनमत मिला दी, थोड़ी सी परमत मिला दी, शास्त्र मत गुरु मत मिला दी, मैंने आपको क्लास का आधी बातें दुनिया की बता दी, आधी अपने यहां से बता दी, थोड़ी आधी के 99% बताई, 1% बताई, तो आपको कौन सी बात पकड़ेगी, 99% बात नहीं पकड़ेगी, कौन सी बात पकड़ेगी, वो जो 1% बताई ना माया वाली, है ना, तो पकड़ लेंगे बस। तो क्या हुआ, मैंने क्या किया आपकी सेवा की, किस सर्विस की, आपके दिल को क्या कर दिया, जूठा बना दिया, गंदा बना दिया, राइट, नहीं बना है। तो दिल सच्ची माना इसमें बाबा के सिवा कुछ, तो सच्ची दिल ये यंत्र है, साइलेंस पावर राइट। तो जब शिव बाबा जैसे ही हमारे मीठे शिव बाबा जैसे ही ब्रह्मा मां द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं, दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं, तो दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही क्या होता है, हमें दिव्य जन्म मिला। अभी गीता दो दिन पहले मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, आगे क्या था, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में, है ना, क्या गलाई थी गली? कब चर्चा होगी बाबा के पास, चर्चा कब होगी एडवांस पार्टी में, चर्चा कब होगी हमारी, कौन सा मरने के बाद, ये देह और देह की दुनिया से मर जाएंगे तो वहां चर्चा होगी, बाबा मुझे याद करेगा, मरा नहीं हो तो बाबा याद नहीं करता है मेरे को, मैं बाबा के पास पहुंच ही नहीं सकता हूं, राइट, समझ रहे हो, वो लाइन मुझे याद आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मरने के पहले चर्चा नहीं होगी, हम सच्चे बीके बने ही नहीं, सच्चे ब्राह्मण ही नहीं बने, सच्चे ब्राह्मण कब बने, जब हमारा हम मर गए, कहां से, ये देह और देह की दुनिया से, मर्जी वाला जन्म है ना, तो दिव्य ब्राह्मण जन्म मिला माना हम मनुष्यों के चार बातें होती है, देखो एक के पास एक दिल होता है, एक बुद्धि होती है, एक मन होता है और संस्कार होते हैं ना, जैसा संस्कार वैसा शरीर बनता है, संस्कार के अनुसार शरीर बनता है, तो हम कहते हैं दिल बुद्धि मन और तन कह सकते हैं, राइट, चार बातें हुई। अब दिल जो है, दिल में मेरे क्या है, उसी के द्वारा मेरा बुद्धि बनती है, उसी के अनुसार मन बनता है, उसके अनुसार मेरे संस्कार या शरीर बनता है। तो दिल में मेरे क्या है, तो दिल को बहुत मरजीवा माना क्या, मनुष्य के दिल बुद्धि मन और तन चारों में क्या रहता है, देहभान देहाभिमान, देहाभिमान के संबंध संपर्क, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे रहते हैं नहीं, और देहाभिमान के पदार्थ प्रॉपर्टी पैसा बिजनेस ये तो रहता है नहीं, मकान ज्यादातर रहती है, और देहाभिमान से पैदा होने वाले पांच आसुरी स्वभाव, कौन से स्वभाव, आसुरी, आसुरी स्वभाव क्या, नेचर कौन सी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मनुष्य के अंदर ये बातें चलती हैं। बिजनेस भी किसका होता है, संबंध भी किस आधार पे है, करेंसी कौन सी है कलयुग में बताओ, कलयुग करेंसी कौन सी है, बोलो मैंने बोलो माताएं बोलो, ये पांच विकारी करेंसी है, काम क्रोध लोभ इसी से लेन देन होती है, संबंध इसी से बनते हैं नहीं बनते है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आधार पे तो संबंध बनते हैं नहीं बनते, लोभ के आधार पे बनते हैं, मोह के आधार पे बनते हैं, काम विकार के आधार पे बनते हैं, क्रोध के आधार पे बनते हैं, डरा दो लोगों को आपके आसपास चिपके रहेंगे नहीं, मोह के आधार अहंकार के आधार पे बनते हैं, ये करेंसी है, ये आसुरी स्वभाव है, और जिन पांच विकारों के वश होकर हम कर्म करते हैं ना, तो हमारे 10 आसुरी आदतें बन जाती हैं, आलस्य अलबेलापन दोष दर्शन, आत्मा मन आत्मा कैसे, आत्मा सदा अलर्ट और एक्यूरेट है, आत्मा सदा अलर्ट और एक्यूरेट है, तो जैसे ही देह विमान आता था क्या होता है, पांच विकार को शो कर्म करते थे क्या, आलस आने लगता है, अगर आलस आ रहा है इसका मतलब क्या, देवी मन आ रहा है, अलबेलापन आ रहा है, केयरलेस कर लेंगे ना, कोई बात नहीं आज रात को देर से सोए, अमृत वेला बाद में मुरली मोबाइल पे सुन लेते, टीवी पे सुन लेते, आलस आया ना, अलबेलापन आया नहीं आया, तो अगर मेरे अंदर आ रहा है आलस अलबेलापन, तो इसका मतलब क्या है, देवी मन है। और दोष दर्शन, आत्मा का नेचर कैसी, गुण दर्शन, गुणों में व्यवहार, प्रत्येक में हमारा गुणों में व्यवहार था, जैसे देवीमान आता है तो एक आदत पड़ जाती है किसकी, गुण दर्शन की, दोष दर्शन की, पहले हंस थे जब सत्य में थे ना, हम देवी देवता थे, हंस थे, दूसरों के गुण दिखाई देते थे, हजार कंकड़ पड़े हैं, दो मोती पड़े, सिर्फ मोती नजर आते थे, जैसे देवीमान आया तो क्या बन गए, बगुले बन गए, अब हजार मोती पड़े हैं क्या, उस पर दो कंकड़ दो कीड़े पड़े हुए लार्वा, वो दो लार्वा ही नजर आते, शादी के पहले एक लड़का लड़की होते ना, लड़का के लड़के को उस लड़की में बहुत गुण दिखाई देते, लड़के को ना कहते इसके अंदर इतना गुण भरे पड़े, इसके जैसी लड़की दूसरी नहीं है, मैं से शादी करूंगा, और लड़का लड़के को बोलो दूसरे से शादी करनी नहीं, मैं तीसरी लड़की से, इसमें बहुत गुण है, हम तो हंस हैं दोनों, हंसों का जोड़ा है, अब शादी कर दो फिर क्या होता है, 3 महीने बाद पूछो अभी क्या हाल है हंसों का, लड़के से पूछो कहते बहुत गलती कर दी मैंने, इसमें तो अब गुण ही गुण भरे पड़े, मैं रह नहीं सकता इसके साथ, लड़की से पूछो तो क्या होगा, उसे कही बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो ऐसे अच्छी थी नहीं, क्योंकि देव विमान आ गया, उससे पहले देव विमान नहीं था, दो सितारे थे ना, अभी क्या बन गए, दो पति पत्नी बन गए, बॉडी कॉन्शियस रोड कॉन्शियस, तो क्या हुआ देव, तो दोष दर्शन शुरू हो गया, बदलने की भावना, माफ नहीं कर सकता, जो आत्मा आने वाला क्या था, मेरे से गलती होती इससे भी कोई बात नहीं, दोष मतलब बदलने की भावना पैदा होती है, और आत्मा स्थिति में निश्चय होता है, स्वयं बाप पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय, और किस पे, ब्राह्मण पर निश्चय, परिवार पर निश्चय, लौकिक परिवार जो भी मिला, लौकिक में अलौकिक में जो मिला, निश्चय होता है अच्छा है मेरे लिए, और विश्वास भी होता है, बाप पे विश्वास, स्वयं पे विश्वास, ब्राह्मण पे विश्वास और परिवार पे, और जैसे देव में आता क्या होता, आदत पड़ जाती किसकी, शक करने की, पता नहीं बाबा पता नहीं करेगा नहीं करेगा, मेरे पास तो मेरी तो हालत ही खराब है, ड्रामा भी क्या करने वाला पता नहीं, लौकिक वाले क्या मतलब, कोई मदद नहीं करता है, सब मतलब ही विश्वास भी खत्म, अनुमान लगाने लगते, राइट, समझ में आ रही, ऊपर से जा रही है, आ रही है ऊपर, तो ये आदत पड़ जाती है, मतलब ये चेक करने का आपको इससे बता रहा हूं कि आलस है, अलबेलापन है, दोष दर्शन हो रहा है, किसके अवगुण दिखाई दे रहे हैं किसी घर में या किसी बाहर, तो इसका मतलब क्या है आपके अंदर, देह अभिमान है, साइलेंस पावर नहीं है, दिल सच्ची साफ नहीं है, ये दिल में ही रहते हैं ना सारी चीजें, तो दिल सच्ची साफ नहीं है, अलबेलापन है, दोष दर्शन बदलाने की भावना, कोई गलत की गाली दी मेरे को, इंसल्ट की, क्रोध किया, मेरे को धोखा दिया, मेरे को लगता है इसको मैं भी ऐसे करूं, टिट फॉर टैट, तब समझ आएगी इसको, इसका मतलब देह अभिमान है, अगर शक है किसी पे, अनुमान लगाते हैं तो देह अभिमान है, और आत्मा की नेचर क्या है, बेफिक्र बादशाह, ईश्वरी को करो ना, बाबा मेरे साथ है, हर समय साथ है, हर जगह साथ है, मेरे हर कर्म में मेरे साथ है, तो क्या हुआ, बेफिक्र बादशाह, निश्चिंत अवस्था होती है, परवाह नहीं होती, जैसे ब्रह्मा बाबा थे ना, बैगरी पार्ट चला तो ब्रह्मा को चिंता हुई क्या, चिंता हुई कैसे होगा, बच्चे 400 बच्चे बैठे, खाने को पैसे ही नहीं है, दाल नहीं, आटा नहीं, चिंता हुई, बेफिक्र बादशाह, बाबा बैठा है, सारे विश्व को खिलाने वाला है, अपने बच्चों को भूखा छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, कभी छोड़ ही नहीं सकता है, बेफिक्र बैठते नहीं बैठे थे, ऐसे करो, उसको फोन करो, बोला था उसको फोन करो, उसको फोन करो, किसी को नहीं बोला, निश्चिंत, और अगर देह विमान चिंता होती है, चिंता एक आदत बन जाती है, संस्कार बन जाता है, और देह विमानी दैयमानी आत्मा क्या होती है, निर्भय होती है, जरा भी डर नहीं लगता है, कुछ भी हो जाए, कोई मारने को आ जाए, पिस्टल लेके आया लगा दे तो क्या हुआ, क्या हुआ, डर लगेगा, चक्कू लेके आ जाए, अगर मैं आत्मा हूं तो डर लगेगा नहीं, क्यों पंजाब का, आप पंजाब तो कोई नहीं, पंजाब वाले को बैठे, पंजाब था ना जब आतंकवाद चल रहा था 1983-84 में, तो वहां पर पंजाब में क्या था, जब वो आतंकवादी फिरोजपुर में आतंकवादी बहुत आते थे, बॉर्डर स्टेट है ना, आतंकवादी आते थे, तो टीचर मैंने एक बार टीचर मैंने अकेली थी सेंटर पे, दोपहर का टाइम था 11 बजे का, उसने बताया, अपना अनुभव बताया था, तो 4 आतंकवादी आ गए, AK-47 समय लेके आ गए, उसने कहा वो पंजाबी में बोलते हैं बहन जी नहीं बोलते, क्या बोलते, पैनजी बोलते, पैनजी FS बंद करो, तुसी सेंटर वेंटर बंद करो, तो धूप का टाइम था, तो उसने कहा प्राजी तुसी बैठो तो सही, बंद कर देंगे मैं बंद कर देंगे, आप इतनी गर्मी में आए हो, थोड़ा शिकंजी बना देते हो, आप पी लो फिर बंद कर दें, कोई बात मेरे भाई हो ना, बैठ जाओ, वो AK-47 ऐसे दिखा रहे थे, तो बहन जी डरी क्या, उसको शिकंजी बना के लाई चारों के लिए, और गुरुवार का दिन था, भोग बना हुआ था, कड़ी कड़ी वो था ना, वो बनी थी ना, क्या बोलते हलवा बनता है ना, हलवा था, तो देखिए आइए, तो बाबे का भोग मतलब पंजाबी मतलब बाबे का भोग है, वो पंजाबी में लोग बोलते ना बाबा में, वो नानक वो बाबा कहते ना, बाबा बाबे का भोग है, तो सिखाओ चखो है ना, खाओ है ना, खाया, वो खाने के बाद जो उनका चारों का बड़ा था ना, वो कहता बहन जी मैं थोड़ा प्रा प्रा माना तुम्हारा भाई, कोई तुहानू कुछ कहे ना, कोई आपको कुछ कहे तो मैंने दसना तुझे बहुत चंगी सेवा कर रहे हो, तो क्या था? निर्भयता। वो तो एक ही फोटे से कितने गोले मार देते, तो उसने डरी क्या? मेरे को गोली मार देंगे, जरा भी डरी नहीं, है ना? तो निर्भयता, ऐसी निर्भयता, राइट? हाँ जी, बाबा को भी मारने आए थे पर उनको गुरु नानक देव दिखाई दे गए। आभा मंडल होता ना बहुत बड़ा हमारा, तो दिखाई सामने से दिखाई। तो एक बात मैं सिर्फ इतनी से बता रहा हूं कि आपको ये हमारे अंदर चेक करने की बात है। डर लग रहा है इसका मतलब देवीमान है, चिंता हो रही है मतलब देवीमान है, ठीक है? और जो देव सोल्स कॉन्शियस व्यक्ति होता है ना, उसका आत्मानी क्या होता है? पेशेंस होते, धीरज होते, हर बात में धीरज, आराम से शांति होती, धीरज, शांति प्यार खुशी मिलकर धीरज बनता, तीन चीज से मिलता, शांति प्यार और खुशी तीन चीज से मिलकर बनता, हर बात में धीरज होता है, पेशेंस होते, ना जल्दी ना टाइम की जल्दी, ना काम की जल्दी, कोई प्रेशर होता है इसी सब। जैसे दादी जी थे ना, बड़ी दादी, और जो पेशेंस होता है उसको भी बीमार नहीं हो सकता है। पेशेंस सब से ही पेशेंट शब्द आया है, जो पेशेंस लूज करते हैं वो पेशेंट बन जाते हैं, ठीक है, राइट? तो धीरज, अरे जल्दबाजी ना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे को आ रहा है, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, मैं ही ठीक से काम कर सकता, कंपटीशन कंपेरिजन मतलब देवीमान की आदत पड़ी है, आदत बन जाती है टाइम की जल्दी का, हर काम में जल्दीबाजी, हर काम में जल्दी। और फिर ईर्ष्या द्वेष, आत्मा विश्व कल्याणकारी है, सारे विश्व, ये हमारी 10 बातें हमें चेक करनी चाहिए। तो मनुष्यों के दिल बुद्धि मन और तन में चारों में क्या भरा हुआ, ये बातें भरी हुई, वो उन आंखों से दिखाई देता है, मुख से बोलते यही दिखाई देता है, कानों सुनते यही बातें, हाथों में वही वाइब्रेशन आते नहीं आते, राइट? और ब्राह्मण और मनुष्य में क्या फर्क है? जैसे दिव्य ब्राह्मण जन्म मिलता है ना, तो हम चारों इन संपत्ति से मर जाते हैं, देहभान से मर गए, देवीमान से मर गए, देवीमान के संबंध संपर्क से मर गए। अभी हमारा कोई माता पिता पति पत्नी बच्चे हैं क्या? बच्चों के बच्चे होते हैं क्या? हम बच्चे हैं ना बाबा के, तो हमारे बच्चे हैं, बच्चे हैं क्या हमारे? हमारे बच्चे नहीं, हम खुद ही बच्चे हैं। हमारे युगल है क्या? शिव बाबा की युगल है ना, वो भी किसी की युगल को अपनी युगल बोलना अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है नहीं? नहीं? ये मेरा युगल है, अरे शिव बाबा का युगल है वो तो, नहीं? अच्छी बात है ना, समझ गया ना? तो ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए, राइट? तो इनसे मतलब दिल, जैसे यदि ब्राह्मण जन्म हुआ तो मर गए ना, इससे पांच विकार से मर गए और इनके 10 बच्चों से मर गए, 10 आत्मों से मर गए, तो ऐसा बस मैं ब्राह्मण बना, अभी पुरानी सब बातें खत्म, और तब बाबा दिल में आ जाता है। दिव्य ब्राह्मण जन्म मिला मना, बाबा दिल में आ गया, क्योंकि बाबा ने दिया ना, शिव बाबा ने दिया, ब्रह्मा बाबा दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, तो शिव बाबा दिल में आ गया। और जैसे दिल में शिव बाबा कौन है उसको महसूस करो, अभी 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 हम समझो योग अभी शुरू कर रहे हैं, शिव बाबा कौन है अपने दिल में, दिल में ना यहां पर चेतना में महसूस करो, कौन है शिव बाबा? ज्ञान का सागर, ना एबीसीडी का सागर, मैं आत्मा हूं, ये बाबा अद्दा से मैसेज देता है। बच्चे तुम देह नहीं, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज इस शरीर को चला रही हो, मन के माध्यम से चला रही हो, राइट? टीम के माध्यम से, विचार भावना वृत्ति और स्मृति के माध्यम से, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जा तुम्हारे पास बहुत कम हो गई, शरीर मन रोगी बन गया, तन भी रोगी हो, और मैं परमा तुम आत्मा मुझ परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम सत्य परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस परम पिता परमात्मा से सर्व संबंधों की मही सारवादी याद से कंबाइंड हो, मतलब मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, किसी देहधारी से नहीं है संबंध, नहीं संबंध उसके साथ, सब संबंध नहीं है, यहां क्या है संबंध नहीं है, यहां पे क्या करना है, क्यों जन्म लिया, फला व्यक्ति मेरा पति क्यों बना, पत्नी क्यों बनी, मेरा बेटा क्यों बना, मेरा भाई क्यों बना, मेरी मां क्यों बनी, बाप क्यों बना, कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए 10 रुपया लिया था, वापस कितना देने के लिए 4,18,35,000, 2 गाली दी थी कितनी गाली खाने के लिए, 20,000 गाली खाने के लिए, नहीं 2 बार अपमान किया था, कितनी बार अपमान होगा वो खाने के लिए, अपमान धोखा दिया था धोखा खाने के लिए, हिसाब किताब के लिए जन्म लिया, ये संबंध ही नहीं है मेरे, बंधन है, यहां फर्ज है, अकाउंट क्लियर करना पड़ेगा, राइट? यस क्लियर हो गए? नहीं क्लियर हो तो ये मेरे बाबा बाबा मुझे कह रहा बच्चे अभी तक जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ अभी तक हुआ है जो हो रहा है बीमारी आ गई पहले बहुत बीमारी लोगों ने तंग किया धोखा दिया तंग किया किसने मेरा पैसा ही लूट लिया किसने मेरा प्लॉट ही अपने काबू कर लिया अपने अपने मेरे प्लॉट पे अपना मकान बना लिया मानता नहीं है तो अभी क्या करूं ये बच्चे अभी जो हुआ अभी तक जो अभी जो हो रहा है तुम्हारे अपने कर्मों का हिसाब लिखा है जो तुमने बोया था वो काटा है काटता है और काट रहे हो अब क्या करो अब उसको फुल स्टॉप लगाओ अपने सत्य में अपने सत्य स्थिति में टिके मुझे परम सत्य परम धाम गर्म परम सत्य से कंबाइंड होकर कर्म करो तो ये जो है इसको ये स्थिति बनाओ राइट बाबा हमको समझाता है ABCD समझाता है अंदर अंदर दिल में बाबा है ना और फिर बाबा की मुरली जैसे हमारी माँ हमारे दिल में होती ना माँ मर जाती तो क्या याद आता है माँ की कई बातें याद आती है बाप मेरे दिल में होता है तो बाप की कई बातें याद आती है इसे को याद कहते हैं ना बाबा ने कहा ना मुरली में क्या था जैसे छोटा बच्चा माँ को याद करता है ऐसे ही याद करना आज बाबा ने कहा देह अभिमानी बनो बाप को याद करो तो याद का बल जमा हो याद का बल ही साइलेंस पावर है राइट साइलेंस पावर क्या है याद का बल याद से क्या मिलेगा हमको कौन सा बल सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जा है अंदर ज्ञान मन सत्य की समझ आ गई ABCD आ गया पवित्रता आ गई शांति आ गई सच्चा प्रेम सच्चा स्नेह आ गया इंद्रिय सुख आ गया व्यवहार में आ गया आनंद आ गया प्राण शक्ति आ गई यही साइलेंस पावर है इसी को विल पावर भी कहते हैं इसी को विल पावर भी कहते हैं साइलेंस पावर भी कहते हैं ये मेरे पास बल कब बनता है बल कब बनता है मेरे पास 10 रुपए हैं 10 रुपए पैसा है क्या 10 रुपए क्या मिलेगा एक पानी की बोतल भी नहीं मिलेगी मैं 10 रुपए जमा करते करते रोज जमा करते 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 मेरे पास 1,00,000 रुपए हो गया अब पैसे का बल आ गया ठीक है क्या आ गया पैसे का बल है ना ऐसे ही निरंतर योग लगाते लगाते लगाई तने जितनी समझ सत्य की समझ आ गई इतनी पवित्रता शांति प्रेम सुखांत आ गया तो याद का बल साइलेंस पावर आ गई तभी तो योग का प्रयोग करेंगे मेरे पास आटा हो घर में 50-100 ग्राम 200 ग्राम और आदमी 10 लोगों की रोटी बनानी हो तो क्या करेंगे 10 लोगों की रोटी बनेगी 200 ग्राम आटे से तो कैसे बनाओगे प्रयोग योग का प्रयोग माना क्या है साइलेंस पावर का प्रयोग क्या है इसका मतलब क्या है कि उसको प्रैक्टिकल कार्य में लगाना अपने तन की समस्या मन की समस्या धन की समस्या परिस्थितियां घर की समस्या है ना समाज की समस्या प्रकृति के 5 तत्व तो गंदे हो गए उनकी उनकी प्रॉब्लम हो रही है ना अभी पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है उसकी समस्या है ना समस्या तो उन पे मुझे यूज करके उनको शांत करना कम से कम मेरा मन तो ना भटके भले लड़ाई होती रहे वर्ड में विनाश तो होना ही है वो तो होगा ही फिर मेरी अवस्था खराब ना हो जाए ना बम बज रहे तो बजते रहेंगे मैं क्या फर्क पड़ता मैं इतना आभा मंडल बढ़ा लूं साइलेंस पावर जमा होकर इतना याद करता जाऊंगा आभा मंडल बढ़ाता जाएगा तो मेरा जैसे मेरा मैं खूब योग लगाया मेरा 8 फुट तक मेरा आभा मंडल बन गया तो 8 फुट तक ये बिल्डिंग भी टूटेगी नहीं टेढ़ी हो जाएगी भले गिर के पर मेरे को चोट नहीं पहुंचेगी जहां तक आत्मा की एनर्जी है ना स्पिरिचुअल एनर्जी वहां नेचर की एनर्जी इसको अटैक नहीं कर सकती क्योंकि नेचर प्रकृति दासी है दासी अपने मालिक पर अटैक नहीं कर सकती कर सकते तो जैसे दिव्य ब्राह्मण जन्म मिला ना हमको तो मुरली अंदर बाबा की मुरली क्या बाबा के कहे महाबा के याद आने लगते हैं नहीं तो याद नहीं आते जो दिल में होता है उसकी याद आती है उसकी कई बातें याद आती दिल में मेरे कोई देहधारी है बच्चा है मेरा मेरी प्रॉपर्टी है तो वो याद आती है ना? बाबा है तो बाबा याद आता है जैसे दिल में बाबा आता है बाबा 2 गिफ्ट हमको देता है दिव्य ब्राह्मण जन्म होते 2 हमको बर्थडे गिफ्ट मिलती है कौन कौन सी दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि तो दिव्य दृष्टि मिली ना ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया अब मुझे सत्य को प्रकट शक्ति आ गई सत्य क्या है सत्य में सदा जो है कौन है सत्य परमात्मा सत्य है प्राणेश्वर है ना आत्मा प्राण कहते ना अब प्राणों को आत्मा तो उजाई हुई थी अब आत्मा में करंट आ गई तो क्या आत्मा जागृत हो गई तो मेरे मुझ आत्मा का प्राणेश्वर है ना वो तो दिल में बाबा आ गए। तो जैसे ही आता है ना तो क्या होता है, मेरे ज्ञान की तीसरी नेत्र खुल जाता है, सत्य को प्रज्ञ शक्ति जागृत होती। पहली शक्ति ये बुद्धि में आठों शक्तियां होती है। क्या होती है आठों शक्तियां? बुद्धि में होती है, क्योंकि बुद्धि की लाइन क्या होनी चाहिए, क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। आठों शक्तियां हैं तो क्लीन और क्लियर है, दिल सच्ची साफ हो गई तो बुद्धि की लाइन क्लीन क्लियर होनी चाहिए, तब मन मनाभाव होते हैं, राइट। तो मन मनाभाव नहीं हो सकते। तो जैसे हम दिल में बाबा रखा, बाबा को हमेशा दिल ही दिल में बाबा को रिवाइज और रियलाइज करते हैं, एबीसीडी को रिवाइज रियलाइज करते थे, राइट। कि दिल जिस बाबा है, मैं बाबा, बाबा सब मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई ना, बस बाबा है और मैं हूं, बस दुनिया में कोई नहीं है। संडे की मुरली याद है, बाबा ने सात भाग्य की लकीर बताई ना, बाबा ने क्या बताया, बच्चों के मस्तक पर भाग्य की लकीर चमकती, सितारा चमक रहा है। तो दिल को आत्मा का बाबा शरीर से बात कर रहा है, आत्मा से बात कर रहा है, आत्मा से बात कर रहा है। तो जब दिल सच्चा होगा ना तो आपको समझ आएगा, क्योंकि मुरली जो ना ये बहुत भूल भलिया है, भूल भलिया समझते, समझ नहीं आती, बहुत नया नया कोई सुनता है समझ नहीं आती, हमको भी समझ नहीं आती थी। जैसे जैसे मैंने उससे मुरली पढ़ी ना, तो सुनी फिर, तो मेरे दिल में बाबा से बात की, बाबा कैसी है ये, आपने क्या बताया इसके बारे में, मस्तक की, मस्तक भाग्य की रेखा, नैनों में स्नेह शक्ति की रेखा, और क्या वाणी में मधुर वाणी, हाथ मुठ में मुस्कान, हाथों में संपन्नता, दिल दिलाराम के बाप में लवलीन है ना, और हाथों में संपन्नता और पैरों में कदम में पदम। तो आप आत्मा से बात करो, शरीर से बात करो, बाबा कहते मैं तो आत्मा से बात कर रहा हूं। आत्मा का मस्तक कौन सा है? आत्मा का मस्तक दिल है। दिल में दिलाराम आ गया, ये भाग्य का सितारा चमक रहा है। और नैन कौन से है? आत्मा के नैन कौन से हैं? बुद्धि और मन, बुद्धि और मन, ये नहीं, ये तो शरीर के नैन है। बुद्धि और मन में क्या आ गया? स्नेह और शक्तियां, स्नेह का सागर आ गया और बुद्धि सर्व शक्तियां आ गई, राइट। अब महसूस करो, दिल में दिलाराम, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानु शक्तियों का सागर, ये मेरा भाग्य है। सब मनुष्यों का भाग्य नहीं है, मनुष्य दिल में बाबा आता ही नहीं, मेरे दिल में बाबा आया है, मेरे दिल में सागर बैठा है। और बुद्धि और मन में क्या आ गया? स्नेह और शक्ति। स्नेह माना क्या? तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, स्नेह का मतलब ये होता, प्यार का मतलब दिल से सम्मान से हम सबको स्वीकार करते हैं, उसको पालना करते हैं, बकायदा वो कुछ भी करे हम पालना करते, इसे स्नेह का सागर। और शक्तियां माना आठों शक्तियां आ गई, बुद्धि में भी आ गई, दिल में भी आ गई। अब क्या रहा? अब मुख में, मुख माना मधुर वाणी माना संस्कार, संस्कारों में मीठा व्यवहार आ गया। मुख कौन सा है? संस्कार हमारा मुख है, इससे हम मीठा व्यवहार करते हैं। बोलने की बात नहीं है, व्यवहार, मीठी वाणी। मुस्कान कौन सी है? होठ कौन से है हमारे? आत्मा का होठ कौन से है बताओ? आत्मा की पलके होती है ना, बाबा कहता है पलकों बैठा के ले जाऊंगा, है ना, कौन सी पलके? ये वाली पलके, बोलो कौन सी पलके होती है? आत्मा की पलके कौन सी है? आत्मा का सॉरी होठ कौन से है? उसका आभामंडल, उसका आभामंडल कितनी एनर्जी जमा की है, जितना बड़ा आभामंडल उतना ज्यादा चेहरा हर्षित कशिश वाला होता है, कशिश करता है ना, जैसे बाबा आते तो कितना कशिश करता है ना, मैं महीना में कितना कशिश होती है, क्योंकि इतना बड़ा आभामंडल है ना, नहीं समझ आ रही मुरली कैसे? अब मुरली कैसे मनन चिंतन करते हैं ना, तो कितना नशा नशा चढ़ गया, नशा चढ़ रहा है नहीं। और जब स्नेह आ गया, संस्कार भी ऐसे हो गए है ना, मधुर व्यवहार वाले हो गए, अब क्या है? दिल दिलाराम के लव में लवलीन हो गया, बुद्धि मन संस्कार ऐसे हो गए ना, तो अब दिल दिलाराम के लव में लवलीन हो गया, नहीं हो गया, नहीं हो गया, हो गया आपका लवलीन हुआ ना, ये देखा आपने। अब हाथों में संपन्नता, हाथ, हाथ का हाथ क्या है? हाथ क्या है? बुद्धि को ही हाथ कहते हैं, बुद्धि रूपी हाथ। तो हाथों में संपन्नता माने ज्ञान गुण शक्तियां सब सब खजाने भरपूर हो गए, राइट। और कदम में, कदम आत्मा के कदम कौन से होते? ये बने, हर संकल्प आत्मा का कदम है, हर संकल्प पदम। अगर अब मैं ऐसी स्थिति में रहकर कदम कोई भी संकल्प करता हूं तो मेरे में पदमों का खजाना है, राइट यस। तो दिल में जब बाबा है ना तो क्या होता है, तीसरी आंख खुल गई, अब मुरली समझ आ गई। ये तो मुरली समझ नहीं, आगे फिर बेफिक्र बादशाह है, बाबा ने कहा ऐसे हो वैसे हो, सारी मुरली अपने आप बन गई। आप मुरली पढ़ के देखना दोबारा से, मैं तो जेब में है मुरली, संडे वाली भी आज की भी, ये पढ़ के देखना। मतलब बाबा की मुरली पढ़ोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा, आनंद आएगा, ठीक है। तब समझ आई ये राजदी खुला सात सात लकीर वाला, तो समझ नहीं आएगी, तो ये जरूरी है। ऐसी स्थिति बननी चाहिए, समझ में आ रहा है, अंदर जा रहा है। तो ये स्थिति जब दिल में दिलाराम आया, तीसरी आंख खुली, और तीसरी आंख खुलते क्या हुआ, ज्ञान समझ में आ गया। तीसरी आंख से देखो अपने आप को, मैं कौन हूं, मैं यहां बैठी आत्मा हूं, देह से अलग, किसकी संतान हूं, परमात्मा की संतान, संबंध किसके साथ है, उसके साथ है। यहां से वर्टिकल कनेक्शन हो गया तो हॉरिजॉन्टल अपने आप ठीक हो जाएंगे, माता पिता पति पत्नी बच्चे सब अपने आप ठीक रहेंगे। सबको क्या चाहिए घर में, और पवित्रता अभी क्या आ गया, जैसे ही बाबा के साथ में रहता हूँ, बाबा दिल में रहता है तो मेरे को अपना अनाज, जैसे बाबा दिल में रहता है तो मेरे को अपना अनाज, जैसे छोटा एक बच्चा आता ना, एक बड़ा हो गया 35 साल का लड़का, छोटा एक बच्चा आता ना, एक बड़ा हो गया 35 साल का लड़का हो गया, करेक्टर बन गया अपनी माँ, हो गया करेक्टर बन गया अपनी माँ के पास आता, जब मैं कहाँ पहुंच गया, डी माना डी ड्रामा यहां पर है ना, तो मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, कहाँ पहुंच गया, पवित्रता। कैसे, कितने लेवल की, सातवें लेवल की पवित्रता, ब्रह्मचारी ब्रह्माचारी वाले हैं। और फिर शांति क्या है, टिकट, और प्रेम क्या है, वो भी टिकट। ऐसे दिखाई देगा हम सत्य के महलों में, यहां विनाश हो रहा होगा वहां सत्य में, राइट। बाबा कहते ना रिटर्न जर्नी ना, तो इस तरह साक्षी मनन चिंतन करते करते क्या हुआ, चित्त अभी क्या हो गया, अब हमारे क्या हो गया, बाबा से कम माइंड हुए,